हेलो, अंतरा ने कॉल रिसीव करते हुए बेपरवाही से कहा। अगले ही पल दूसरी तरफ से अन्वय की चंचल आवाज उभरी। कैसी हो कानपुर का आइटम वॉर्म? क्या संबोधन था, सुनते ही अंतरा चिढ़ उठी। अंतरा, अंतरा नाम है मेरा, अगर लेना नहीं आता तो बार बार फोन करके परेशान न किया करो मुझे। भड़कती क्यों हो यार, अंतरा ही बुला लेता हूँ। अन्वय तुरंत ही लाइन पर आ गया था। अंतरा मुंह ऐंठते हुए चुप रह गई। कुछ पल बाद अन्वय ने ही आगे कहा, आज खुश तो बहुत होगी तुम। अंतरा ने तुरंत ही हामी भरी, हूँ तो सही, मेरी जीजी वापस आई हैं, मैं तो बहुत 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 खुश हूँ। अपनी चिढ़ और गुस्सा छोड़कर वो मुस्कुरा उठी थी। दूसरी तरफ से अन्वय ने भी मुस्कुराते हुए कहा, इस खुशी में थोड़ी भागीदारी मेरी भी है। अच्छा जी, और वो कैसे, जरा ये तो बताओ, अंतरा ने तल्ख लहजे में सवाल किया। दूसरी तरफ अन्वय ने तुरंत ही जवाब दिया, अपनी भाभी को भेजा है मैंने, इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। अन्वय ने यूं दिखाया जैसे वाकई में बहुत बड़ा त्याग किया हो उसने। उसकी बात सुनकर अंतरा खींच उठी और तिनकते हुए बोली, तुम्हारी भाभी मेरी जीजी भी हैं और मेरा उनसे रिश्ता जन्म से जुड़ा है, जबकि तुम चंद महीने पहले उनकी जिंदगी में आए हो। इस हिसाब से जीजी पर ज्यादा हक मेरा हुआ और तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने अपनी जीजी को तुम्हारी भाभी बनने दिया। अंतरा कहाँ कम थी, उसने जैसे को तैसा जवाब दिया था, पर अन्वय भी कहाँ इतनी आसानी से पीछे हटने वाला था। उसने अपनी अलग ही फिलॉसफी झाड़ी, अरे वो तो मैं हूँ ही, पर अब बात यह है कि शादी के बाद भाभी पर भाई का हक सबसे ज्यादा है और मैं उनसे जुड़ा हूँ, इसलिए भाभी पर ज्यादा अधिकार मेरा हुआ, और अभी मैंने अपनी भाभी को वहाँ भेजा है तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। वाह जी वाह, क्या बात कही थी, अन्वय ने तीली लगाई। अंतरा सर से पैर तक सुलग उठे और गुस्से में जबड़े भींच लिए। ए चमगादड़ की शक्ल वाले लंगूर, ज्यादा बगैती नहीं करो वरना फोन में घुसकर ऐसा कंटाप धरूंगी कि भरी जवानी में गुजर जाओगे। अच्छा जरा घुसकर तो दिखाना फोन में, मैं भी देखूं कि ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में कि अब इंसान भी फोन से ट्रांसफर होने लगे। चिड़ी हुई अंतरा को उसने जानकर उंगली की थी और अंजाम भी उम्मीद के मुताबिक ही आया था। अंतरा गुस्से से भड़क उठी थी। सुनो बे, ज्यादा दिमाग का दही नहीं करो हमारी, अगर हमारी खोपड़ी फिर गई तो तुम्हारे मुंह का नक्शा बिगाड़ देंगे, इसलिए अपनी बकैती बंद करो और जान छोड़ो हमारी। एक तरफ अंतरा गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी तो दूसरी तरफ अन्वय के लबों पर कातिलाना मुस्कान बिखरी हुई थी। उसने एक बार बेफिक्री भरा जवाब दिया, पहले पकड़ तो लूं फिर छोड़ भी दूंगा, वैसे मुझे मजा बहुत आता है तुम्हें ऐसे परेशान करने में, तुम्हारे ये तीखे तेवर बड़े पसंद हैं मुझे। ज्यादा तीखा भी सेहत के लिए अच्छा नहीं लगता, संभाल कर रहो बच्चू, कहीं लूज मोशन न लग जाए, फिर सारी उम्र बाथरूम के चक्कर ही काटते रह जाओगे, अंतरा ने सुलगते हुए तीखे अंदाज में जवाब दिया। और अन्वय उसकी बात सुनकर हंस पड़ा, जिससे अंतरा और ज्यादा खींच उठी। कोई बात है तो बोलो वरना फोन काट रही हूं मैं, यहां अंतरा ने चेतावनी दी और अन्वय एकदम से शांत हो गया। ओके, अब कोई मस्तियां मजाक नहीं, तुम्हें और छेड़ता भी नहीं और सीधे काम की बात करता हूँ। बोलो, अंतरा के तेवर अब भी बिगड़े थे जबकि अन्वय एकदम शांत। तुमने मुझे अपनी जीजी का ख्याल रखने कहा था, कोशिश मैंने पूरी की है, फिर भी पूछ लेना भाभी से, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, अगली बार तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस दोबारा कभी पिछली बार जैसे आंखों में आंसू लेकर मुझसे रिक्वेस्ट मत करना, तुम मुझे मुझसे लड़ती झगड़ती हुई ही अच्छी लगती हो, तुम्हारी आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी जचती नहीं मुझे। अन्वय बेहद संजीदा था और उसकी बात सुनकर अंतरा की आंखों के सामने वो लम्हा उभर आया था जब अहाना की विदाई के वक्त उसने आंखों में आंसू भरते हुए अन्वय को उसका ध्यान रखने के लिए कहा था। पल भर में उसके चेहरे के भाव कोमल हो गए थे। अन्वय के आखिर में कहे शब्दों में छुपे एहसासों से शायद वो अभी अनभिज्ञ थी, पर पल भर को उसकी धड़कनें थम गई थी और हमेशा चटरपटर बोलने वाली अंतरा एकदम से खामोश हो गई थी। लम्हे भर बाद एक बार फिर अन्वय की ठहरी हुई गंभीर आवाज आई, एक और बात, इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जीजी मेरी भाभी हैं। तुम्हारे जितना पुराना और गहरा रिश्ता भले ही नहीं मेरा उनसे, पर वो मेरे लिए भी उतनी ही अहमियत रखती हैं जितनी तुम्हारे लिए। मैंने बस अपनी भाभी का थोड़ा सा साथ दिया है ताकि उस नए जगह नए लोगों के बीच वो खुद को अकेला ना महसूस करे, बस इतना ही कहना था मुझे। अब अपनी जीजी के साथ जितना वक्त मिले उसे एंजॉय करो और अगली बार जब उन्हें यहाँ भेजो तो मुस्कुराती हुए भेजना, ताकि वो भी वही मुस्कान अपने लबों पर समेटे हमारी ओर कदम बढ़ाएं। अपने नेचर से उलट कन्वय इस वक्त बेहद गंभीर नजर आ रहा था और अंतरा उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई थी। पल भर को उनके दरमियान गहरी खामोशी छा गई। फिर अन्वय फोन काटने ही वाला था कि दूसरी तरफ से अंतरा की सौम्य सी आवाज उभरी, सॉरी। व्हाट? अन्वय ने चौंकते हुए आंखों की पुतलियों को फैलाया। अंतरा ने उससे सॉरी कहा, ये किसी शौक से कम नहीं था उसके लिए, और मन में सवाल कि इस माफी के पीछे की वजह क्या है, जिसका जवाब भी उसे जल्दी ही मिल गया था। तुमने थैंक यू कहने से मना किया था, पर अपनी बदतमीजियों के लिए सॉरी कहकर माफी तो मांग सकती हूँ ना? अंतरा ने इतनी मासूमियत से ये सवाल किया कि अन्वय हतप्रभ सा उसे सुनता ही रह गया। पल भर ठहरने के बाद उसने आगे कहना जारी किया, इतने भी बुरे नहीं हो तुम, पर मैं हर बार तुमसे लड़ पड़ती हूँ, इतनी बदतमीजी से बात करती हूँ, उसके लिए सॉरी, पर इसमें कुछ गलती तुम्हारी भी है। तुम ही हमेशा मुझे उंगली करते रहते हो तो मैं चिढ़ जाती हूँ। हाय रे मासूमियत, माफी मांगे भी तो उसकी गलती गिनवा कर। अनखा की इस हरकत पर अन्वय के लब बेसाख्ता ही मुस्कुरा उठे। मुझे अच्छा लगता है तुम्हें छेड़ना और तुम्हारा मुझसे लड़ना, इसके लिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, पर हमेशा नागिन जैसे जहर ही मत उबला करो। दोस्त हैं हम, कभी कभी मजाक को मजाक जैसे भी ले लिया करो, हर बात पर भड़कना जरूरी नहीं होता। तुम भी कभी इंसानों जैसे सीधे से बात कर लिया करो, हर बार मेरे गुस्से को ललकारना भी जरूरी नहीं होता। अंतरा ने उसी के अंदाज में उसे जवाब दिया और एक बार फिर दोनों की तू तू मैं शुरू हो गई। शायद यही उनके रिश्ते की खासियत थी। रात को देर तक अंतरा और पल्लवी से बातें करने के बावजूद आहाना अगली सुबह हमेशा वाले वक्त पर उठकर बैठ गई थी। इस एक हफ्ते में उसे आदत सी लग गई थी। बाथरूम में जाकर वो फ्रेश हुई और फिर दुपट्टा गले में डालते हुए कमरे से बाहर निकल गई। सुबह के 5 बज रहे थे। दृशान जॉगिंग के लिए निकल चुका था। जयेश जी हॉल में बैठे अपनी सुबह की चाय का इंतजार कर रहे थे। निशांत भी सोया हुआ था और अंतरा पल्लवी ने तो उसके बेड पर ही कब्जा किया हुआ था। बीती रात बातें करते हुए वहीं तो सोए थे तीनों। आहाना तो उठ चुकी थी, पर वो दोनों अब भी घोड़े गधे खच्चर सब बेचकर सोने में लगी थी। गुड मॉर्निंग पापा, जयेश जी को देखते ही आहाना के लबों पर मीठी सी मुस्कान उभर आई थी। वहीं उसकी मिश्री सी आवाज कानों में घुलते ही जयेश जी भी मुस्कुरा रहे थे। गुड मॉर्निंग बेटा जी, आज आप इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? उन्हें कुछ आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि भले आहाना अंतरा जैसे देर तक नहीं सोती थी, पर इतनी जल्दी भी नहीं उठा करती थी, और आहाना इस सवाल की वजह समझ रही थी। बस नींद जल्दी खुल गई पापा, उसने सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए कहा और आकर उनके बगल में बैठ गई। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रख दिया। लगता है जैसे आज सदियों बाद हमारी सुबह गुड हुई है। सुबह सुबह अपनी बिटिया का चेहरा जो देखना नसीब हो गया। उनकी बात सुनकर आहाना के चेहरे पर पल भर को उदासी के बादल घिराए। उसे महसूस हुआ कि सिर्फ उसने ही सबको मिस नहीं किया, बल्कि यहाँ सबने भी उसकी कमी को महसूस किया था, और शायद इनके लिए उससे दूर रहना ज्यादा मुश्किल व कष्टदायक था। आहाना ने अपनी उदासी छुपाई और खनकते स्वर में बोली,
अब से आपकी हर सुबह गुड होगी पापा, और इस सुबह को हम और भी स्पेशल बना देंगे हमारे हाथों की गर्मा गर्म अदरक इलायची व तुलसी वाली चाय के साथ। आप पिएंगे ना पापा? आहाना ने बड़ी ही उम्मीद से उन्हें देखा और उन्होंने भी तुरंत ही हामी भर दी। क्यों नहीं पिएंगे बेटा, हमारी बिटिया हमारे लिए चाय बनाएंगी, हम तो जरूर पिएंगे। तो फिर आप यहीं बैठिए, हम बस अभी चाय बनाकर लाएं। आहाना चहकते हुए रसोई की ओर बढ़ गई। जयेश जी ने जाते हुए आहाना को देखा और अपने आंसुओं को पोंछते हुए मुस्कुरा उठे। आहाना क्या लौटी थी, उनके घर की जैसी रौनक लौटाई थी, और अपने साथ उनकी मुस्कान भी खोज लाई थी जो उसको विदा करने के बाद कहीं खो सी गई थी। आहाना ने रसोई में कदम रखा ही था कि जयंती जी की नज़र उस पर पड़ गई, और वो भी उसे इतनी सुबह सुबह यहाँ देखकर चौंक गई। अनु बेटा, आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? आदत हो गई है मम्मी, नींद खुल गई थी तो सोचा आपकी कुछ मदद करवा दूँ। आहाना ने सौम्य सी मुस्कान सजाते हुए जवाब दिया। पल भर को जयंती जी उसे तकती ही रह गई, फिर प्यार से उसके गाल को छूकर बोली, नहीं बेटा, हमें मदद की जरूरत नहीं, सालों से सब करते आ रहे हैं, अब तो आदत हो गई है, आप जाकर सो जाइए। ससुराल में तो सब जिम्मेदारियां उठानी ही है आपको, मायके में तो बिना किसी काम के चिंता फिक्र के सुख से कुछ दिन गुजार लीजिए। हम आपकी बात समझते हैं माँ, पर हम यहाँ पापा के लिए चाय बनाने आए हैं, और अभी तो हमारी छुट्टियाँ हैं, तो थोड़ी मदद आपकी भी करवा देंगे। आहाना ने सहजता से जवाब दिया और चाय का भगोना गैस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में चाय बनकर तैयार हुई। आहाना ने एक जयंती जी को दी और दूसरा लेकर बाहर जयेश जी के पास चली आई। पापा, आपकी चाय। आहाना मुस्कुराई, और मुस्कुराती भी क्यों ना, जयेश जी ने कितने खुश होकर चाय का कप थामा था, और उनकी स्माइल ही तो आहाना की खुशी की वजह थी। बेटा, आप अपने लिए नहीं लाई? नहीं, अभी मन नहीं है, बाद में पियेंगी, अभी तो कुछ देर अपने पापा के पास बैठेंगी, फिर माँ की रसोई में मदद करवाने जाएंगी। आहाना इनकार में सर हिलाते हुए उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। बचपन की आदत थी उसकी, जयेश जी को खाली बैठे देखकर यूं ही उनकी गोद में सर रखकर लेट जाती थी। आज भी अपने बचपन को जी रही थी, और जयेश जी हमेशा जैसे चाय की चुस्की लेते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। क्या बात है पापा, आज तो सुबह सुबह आपको आपकी चाय मिल गई, दृशांत ने आकर उनके पास बैठते हुए ताज्जुब से कहा। उसकी बात सुनकर जयेश जी आहाना को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हमारी बिटिया ने बनाई है आज हमारी चाय। ये कहते हुए उनके चेहरे पर जो संतुष्टि व प्रसन्नता के भाव थे वो देखने लायक थे। दृशांत ने उनकी बात सुनकर निगाहें उनके बगल में बैठे आहाना की ओर घमाई और नाराजगी से उसे देखने लगा। अनु, हमें तो चाय नहीं मिली, सारा प्यार क्या बस पापा के लिए ही है? आहाना ने उसकी शिकायत सुनकर तुरंत ही इनकार में सर हिलाया। नहीं भैया, आपको भी चाय मिल जाएगी, पर उससे पहले जाकर अपनी बीवी को उठाइए, क्योंकि अब की बार सबके लिए एक साथ चाय बनेगी, हम बार बार चाय नहीं बनाने वाले। बस फिर तो रहने दो, मिल गई हमें चाय, दृशांत ने बुरी सी शक्ल बनाई, जिसे देखकर आहाना और जयेश जी दोनों ही हंस पड़े, क्योंकि सब जानते थे कि नींद में पल्लवी लेडी कुंभकर्ण थी, बिल्कुल अंतरा जैसी।
उसे उठाना मतलब अपनी शामत बुलाना। बेचारा दृशांत नाराजगी से आहाना को घूरता ही रह गया। एक तरफ यहाँ आहाना के आ जाने से घर में रौनक लगी थी तो दूसरी तरफ सहगल निवास में सूनापन पसरा हुआ था। इतने दिनों आहाना से काम करवाने के बाद आज सब भार रूपाली जी पर आ गया था, इसलिए सुबह से ही वो खींची हुई सी मन ही मन बड़बड़ाई जा रही थी, जिसमें वो बस आहाना को कोस रही थी।